मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 11 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं IAS बनने के लिए जिस तरह की हिंदी की जरूरत है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दूसरी घटना को देख लेते हैं और इस घटना के बारे में आप जानते भी होंगे, वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप SCO के नाम से जानते हैं। S संघाई, C कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संगठन, संघाई सहयोग संगठन। संघाई एक स्थान है जो चाइना में है, वहां एक पैक्ट हुआ था, इसीलिए कुछ इसे संघाई पैक्ट भी कह देते हैं। वहां एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था और उसके तहत एक संगठन बना। इस संगठन की शुरुआत जो फाउंडेशन है वो 2001 में रखी गई थी, लेकिन इसकी जो विधिवत तरीके से शुरुआत हुई है वो 2003 में हुई है। देखिए ये क्या है, बेसिकली ये एक यूरेशियन जब हम कहते हैं तो यूरोप और एशिया, शब्दों में ही बहुत सारे चरित्र छिपे हुए होते हैं। ये यूरेशियन दो महाद्वीप है, इसमें यूरोप और एशिया। यूरेशियन जो देश हैं उनके बीच का पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और सिक्योरिटी अलायंस है। मतलब ये तीन क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। ऊपर दिया हुआ है ना शीर्षक जो है वो क्या है, सहयोग। तो तीन क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में सहयोग करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करेंगे और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं वो 6 हैं। देखिए चाइना और रशिया इसके दो सबसे बड़े मेंबर हैं, इसमें रशिया चूंकि यूरोप में है तो यूरोप का हो गया, चाइना फिर एशिया का है। और जो दूसरे चार देश हैं, ये चार वे देश हैं जो पहले कभी रशिया में हुआ करते थे। USSR उस समय रशिया कहलाता था, है ना। आप जानते हैं कि 1990-91 में फिर धीरे धीरे रशिया का विघटन होना शुरू हुआ, अब रूस, अब वो USSR जो है ना अब रूस बन गया है। और उससे अलग हुए जो छोटे छोटे देश थे जिसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है, ये चार और इसके सदस्य हैं। तो शुरू में इसके 6 देश सदस्य थे, बाद में फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके पूर्ण सदस्य बने, तो कुल संख्या अब इसकी हो गई है 8। ये तो इस संस्थान की पृष्ठभूमि है। मैंने इस विषय को आज इसलिए चुना है क्योंकि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अभी इसका शिखर सम्मेलन हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिखर सम्मेलन हो रहा है। शिखर सम्मेलन टॉप के लोगों का सम्मेलन, ये कोई मंत्री स्तर का सम्मेलन नहीं है, कोई सचिव स्तर का सम्मेलन नहीं है, टॉप यानी कि जो उन देशों के जो टॉप हैं, कहीं टॉप पे राष्ट्रपति होते हैं, कहीं टॉप पे प्रधानमंत्री होते हैं, उनका सम्मेलन है। तो आप सोच करके देखिए कि कितना महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा, है ना। चूंकि अभी कोविड का माहौल चल रहा है इसीलिए यह सम्मेलन बकायदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही है अपने उद्बोधन में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, साफ तौर पर जो बात कही है वो देशों का नाम लेकर के नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मंच है, बेसिकली जो SCO जो एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है जहां पर द्विपक्षीय विवादों को नहीं उठाया जाना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मान करके चलिए कि आप इसकी जो मूल भावना है, जो इस मंच की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि ये जो संगठन है, जब तक हम एक दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान नहीं करेंगे तब तक ये संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या को दूसरा कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, लेकिन इशारा साफ है पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान आप देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में संकट खड़ा करता रहता है, और इधर चीन ने उधर लद्दाख में कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अपनी बात कहने लगता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये सही नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो तो जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिषद है जिसे हम दक्षेस के नाम से जानते हैं, उसमें भी बकायदे ये कहा गया है कि इस मंच पर द्विपक्षीय जो विवाद होते हैं उनकी चर्चा नहीं की जाएगी, उन्हें नहीं उठाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता रहता है, तो इसीलिए वो संगठन अब धीरे धीरे इतना मंद पड़ता चला जा रहा है कि कुछ लोग तो यही घोषणा कर रहे हैं कि अब ये ज्यादा दिन का नहीं है। और अगर SCO भी यही चलता रहा तो यही स्थिति आ सकती है। फिर आप देखिए कि कैसे जो दूसरे संगठन बनते जा रहे हैं, ब्रिक्स का नाम आपने सुना होगा, फिर अभी क्वाड की बात हम लोगों ने की है। तो कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वो अब इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि भारत को ये जो SCO वगैरह है, ब्रिक्स वगैरह, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो क्वाड जैसे संगठन हैं इसमें ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। उसका कारण यह है कि उनका मानना है कि जो क्वाड में जो देश है, आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, भारत है, ये जो देश है ये बेसिकली डेमोक्रेटिक है, सही मायने में डेमोक्रेटिक बाय सोल, आत्मा से ही ये लोकतांत्रिक हैं, इनके जो मूल्य हैं वो बहुत ज्यादा हमारे एक दूसरे से मिलते हैं, तो शायद भारत के लिए ये ज्यादा हितकर हो सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको कल प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में कही है उसके बारे में बताया। और नो डाउट कि जो SCO है एक महत्वपूर्ण संगठन है, मेंबर्स के नाम आपको मैंने बताए हैं, इसके जो सदस्य हैं, थोड़ा सा इसके नाम को याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जो प्री एग्जाम हुआ तो उसमें देखा होगा आपने कि G20 देशों के जो में के जो सदस्य हैं उनको आधार बनाकर के क्वेश्चन पूछा गया था। तो चूंकि संघाई सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है, भारत इसका सदस्य है, इसलिए थोड़े से सदस्यों के नाम भी आप अपने दिमाग में दर्ज कर लें तो बेहतर होगा। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय पर, और वो है IAS के लिए हिंदी। दरअसल मैंने इस विषय का चुनाव जानबूझकर किया है, मेरे पास लगातार मेल आते रहते हैं और उस मेल में पूछा भी जाता है और अपनी हताशा भी व्यक्त की जाती है कि सर UPSC हिंदी वालों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही है। स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि भेदभाव क्यों कर रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, उस पर मैं कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात तो कह ही सकता हूं। और मेरा यह मानना है कि भाषा के आधार पर अगर UPSC भेदभाव करना भी चाहे तो पूरा सिस्टम ऐसा है कि वो नहीं कर सकती। हां, UPSC से एक गलती जरूर हो रही है और वो ये है कि जो पेपर आता है उसमें जो अनुदित हिंदी है वो जरूर बहुत कठिन सी है, और कुछ शब्द तो ऐसे हो जाते हैं जिनके जो प्रचलन में नहीं होते, तो हिंदी वालों को उन्हें समझने में बहुत दिक्कत होती है। और इस बार तो अनुवाद की भी एक दो गलतियां पकड़ में आई हैं, वो जरूर एक, आप यूं कह लीजिए कि एक गंभीर मामला या गंभीर समस्या है। अदरवाइज दूसरी कोई ऐसी व्यवस्था वो कर नहीं सकता जिसमें ये कहा जाए कि नहीं, हिंदी वालों के साथ या जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा हो। मुझे लगता है कि जो इस तरह से सोचते हैं उन्हें इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, तर्क के आधार पर विचार करना चाहिए, तथ्यों के आधार पर विचार करना चाहिए, केवल इस आधार पर नहीं कि अरे हमारे साथ तो भेदभाव किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं एक दो बातें यहां रखना चाहूंगा जो बिल्कुल जीवंत हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, मेरे पास डेली जो मेल का अगर मैं औसत निकालूं तो लगभग 60 मेल मेरे पास डेली आते हैं, 60 यस। और मेरे पास जो ज्यादा मेल लिखने वाले लोग होते हैं हिंदी मीडियम के ही होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो इंग्लिश में मेल लिखते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, मैं पढ़ता हूं। और मुझे लगता है कि अगर मैं 60 मेल को पूरा लेकर के चलूं औसत में, तो इसमें से 10 से 15 मेल ही इंग्लिश मीडियम वालों के होते हैं, बाकी सब हिंदी मीडियम वालों के होते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के 50 मेल मान लूं तो इसमें मुश्किल से 10 मेल हिंदी में होते हैं, बाकी सब रोमन लिपि में होते हैं। पहली बात, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बीच बीच में मैं अपने जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनसे ये अपील करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस विषय पर मुझे अपनी राय भेजें, कि यदि इस विषय का लेक्चर उन्होंने सुन लिया हो, जैसे अभी मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में कहा है, यदि इस विषय पर उन्होंने सुन लिया हो, लेक्चर सुन लिए हो, तो प्लीज मुझे बताएं, रिव्यू करें उसकी, एक एनालिटिकल अपना एक रिएक्शन मुझे दें कि उन्हें लेक्चर्स कैसे लगे, उनका क्या हुआ, किस तरह का वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई या नहीं, इस तरह की बातें मैं करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि उसमें से कितने स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो मेरे पास मेल आते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती। अब इसके बारे में, रिव्यू के बारे में, जो मेरे पास मेल आते हैं उसमें 50% मेल जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वालों के होते हैं, और जो 50% मेल होते हैं वो हिंदी मीडियम वालों के होते हैं। अब आप देखिए कि भाषा के स्तर पर आपको समझने की कोशिश करनी होगी। जो टोटल मेल मैंने बताया उसमें हिंदी मीडियम वाले रोमन लिपि में हिंदी लिखते हैं, राइट। और अब जब मैं ये कहता हूं ऑनलाइन स्टूडेंट से, पेड स्टूडेंट से, कि आप लोग रिव्यू कीजिए, तो मेरा मकसद नो डाउट कि मुझे अपने लेक्चर्स के बारे में जानने की एक उत्सुकता होती है ताकि मैं लगातार अपने को अपग्रेड कर सकूं, बेहतर बना सकूं, वो एक भावना है। लेकिन इसके पीछे मेरा एक और भी मकसद होता है, और वो ये कि आप कम से कम इसी बहाने कुछ सोचेंगे तो, विचार तो करेंगे, अपने एनालिटिकल पावर तो डेवलप करेंगे, और फिर आप लिखेंगे भी। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है दोस्तों आप सबसे, आप ये बताइए कि आप लिखते कितना है। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। आप हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में लिखते कितना है? क्या किसी को पत्र लिखते हैं? बताइए, अपने माता पिता अभिभावकों को पत्र लिखते हैं, अपने टीचर्स को पत्र लिखते हैं, अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं? लिखते हैं, खत्म हो गई है पत्र लिखने की परंपरा। आप व्हाट्सएप करते हैं, आप मैसेज भेजते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, दैट्स ऑल, खत्म। या फिर फोन पर आप घंटों बात करते हैं, लिखते नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि बात करना और लिखना दोनों एक है? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं उसकी भाषा और जो आप लिखेंगे उसकी भाषा में बहुत फर्क होता है। और आप लिखना पसंद नहीं करते, कभी विचार करके देखिएगा कि आप लिखना पसंद क्यों नहीं करते। लिखना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा और सोचने में तकलीफ होती है, पहली बात, तो आप लिखना नहीं चाहते। मुश्किल यह है कि मेन एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। दूसरी बात कि जब आप बोलते हैं तो उसमें मात्राएं नहीं बोलते हैं, आप बोलते चले जाते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो उनमें मात्राएं होती हैं, छोटी होगी, बड़ी होगी, वो होगी, र कौन सा होगा, मात्राएं होती हैं। बोलने में तो आप सही बोल रहे हैं लेकिन लिखने में ढेर सारी गलतियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी हिंदी भाषा को बेहतर बनाने के लिए कोई विशेष कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपने मान लिया है कि मुझे हिंदी आती है और अच्छी हिंदी आती है, ऐसी हिंदी आती है कि मेरी हिंदी सराही जाएगी, मेरा इससे काम चल जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनर आपकी कॉपी जांचता है तो आपकी हिंदी को स्तरीय नहीं पाता। उसको लगता है कि ये कौन सी हिंदी है, ये तो बोलचाल की हिंदी है, ये तो सामान्य हिंदी है, वो हिंदी कहां है जो मैं एक शिक्षित स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं, जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिसने सिविल सर्विस की तैयारी की हुई है, जो देश का इतना बड़ा जिम्मेदार अफसर बनने जा रहा है, उसकी भाषा कहां है? वो आपकी भाषा की तलाश करता है और उसे वहां नहीं मिलती। अब ये बताइए कि अगर इसके आधार पर जब जो तलाश कर रहा, भाषा की बात मैं कर रहा हूं, मैं तथ्य की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल ही नहीं कि आपने आंसर क्या लिखा, क्या लिखा जाना चाहिए था, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भाषा की बात कर रहा हूं। जब उसे आपकी भाषा उस स्तर की नहीं लगती है तो आप ये बताइए कि अगर वो आपको कम नंबर देता है तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो आपके साथ पक्षपात कर रहा है? दोस्तों, हम सबको अपनी अपनी भाषाओं के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो हम मीडियम ले रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हमारी क्षेत्रीय भाषा ही क्यों ना हो, क्या सच में हम भाषा के लिए कोई अतिरिक्त कोशिश करते हैं? और अगर करते हैं तो किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश करने के बाद, भाषा अच्छी होने के बाद, फिर जो दूसरा स्टेज आता है वो आता है तथ्यों का, कि आप अच्छे उत्तर लिख करके आए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस आज इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सावन कुमार, दिव्या चौरे खंडवा मध्य प्रदेश से, कृतिका सोनी, अंकुश शिमला से, और राहुल चौहान रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।